यहाँ तक आज की आयत है। हमने पिछले हफ्ते बहुत ही प्यारी आयत पढ़ी, यानी सबसे अजीम आयत इस कुरान करीम की, बहुत खूबसूरत आयत और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आयत समझ में आई होगी और आपने इसको बड़े शौक के साथ पढ़ा होगा और इसको आगे भी पहुंचाया होगा। उसके बाद हमने देखा था एक ये बात कि इस दीन में कोई जबर नहीं है, यानी अल्लाह ताला की शान बड़ी बुलंद है। अल्लाह ताला ने अपनी अजमत, अपना तारुफ बयान फरमाया, अपनी तौहीद बयान फरमाई, और उसके बाद फरमाया उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो कोई जबर नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि कोई हर कोई इस्लाम लेकर आए, हर कोई अल्लाह को पहचान के उसको मान ले, कोई जबर नहीं है। ये दोनों रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, गुमराही का भी सबको नजर आ गया और हिदायत भी सबको नजर आ गई। अब जो कोई तागूत का इनकार करेगा, तागूत मैंने बताया था ऐसी हर ताकत जो इंसान को अल्लाह की इबादत से हटा के अपनी इबादत की तरफ लेकर आए, यानी ऐसी जो भी सरकश कुव्वत है अल्लाह के रास्ते हमें हटाने वाली है, वो कोई भी हो सकती है। वो इंसान के अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसकी बरादरी भी हो सकती है, वो उसका जो समाज है वो भी हो सकता है, सोसाइटी जो है वो हुकूमत भी हो सकती है, वो कोई बादशाह भी हो सकता है। और जो कोई उसका इनकार करेगा ऐसी हर कुव्वत का कि मैं इसको नहीं मानता, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं, तो समझ ले उसने बड़ा एक मजबूत कड़ा थाम लिया जिसको जो कभी नहीं टूटेगा। यानी फिर समझ लें कि उसने एक ऐसी मजबूत चीज पे उसका हाथ पड़ गया है कि अब वो डूबेगा नहीं। समझ लें ऐसे है कि कोई इंसान डूब रहा था और उसके हाथ में कोई ऐसा मजबूत चीज आ गई कि उसने उसको पकड़ लिया, और जब वो मजबूत सहारा उसने पकड़ लिया तो फिर अब डूबने का सवाल नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो ईमान वाले होते हैं उनको अंधेरों से निकाल के नूर में ले आता है, अल्लाह उनका दोस्त होता है। यानी अंधेरे किसके, अंधेरे बहुत सारे हो सकते हैं, कुफर का भी हो सकता है, शिर्क का भी हो सकता है, निफाक का भी हो सकता है, गुमराही और गुनाहों का भी हो सकता है, उनसे अल्लाह ताला उनको निकाल लेता है। और जो काफिर हैं उनके दोस्त तागूत होते हैं, वो तो उनको ये नूर की तरफ आना भी चाहें, हिदायत की तरफ आना भी चाहें, हिदायत की जरा सी कोई रोशनी उनको नजर भी आ जाए ना तो वो उनको वापस अंधेरों में ले जाते हैं, और वो आग के साथी होंगे ऐसे लोग जिन्होंने तागूत को अपना दोस्त बना लिया। तो जिंदगी में जरूरत क्या है कि इंसान तागूत का, हर तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान रखे। इसमें एक मिसाल मुझे याद आती है सईद बिन जुबैर की, कि हज्जाज ने जब उनको पकड़ा था, ये ताबई थे, वो बहुत बड़े आलिम दीन, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे, बहुत ही नेक, बहुत ही बड़े मुहद्दिस, फकीह, इल्म रखने वाले। और पता ही हज्जाज ने बहुत जुल्म किया था, तो हज्जाज ने जब, लंबी बात है लेकिन मुख्तसर इतना बता दूं, हज्जाज ने जब इनको अपने दरबार में बुलाया था और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और खुलफाए राशिदीन के बारे में पूछा, फिर उसके बाद पूछा था उसने कि बनू उमैया में से तुम्हें कौन सा खलीफा पसंद है, तो फरमाया जो अपने खालिक को पसंद है। पूछा इनमें से कौन अपने खालिक को पसंद है, उन्होंने कहा इसका इल्म तो उस जात को ही है, मुझे क्या पता, वही जानता है। कहता मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय, क्या ख्याल है? तो उन्होंने फरमाया था मेरी राय तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। फरमाया कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम अल्लाह की किताब के दुश्मन हो और ऐसे काम करते हो जिससे तुम्हारा रोब और दबदबा और धाक बैठ जाए, और ये अंदाज तुम्हें हलाकत की तरफ ले जा रहा है और ये तुम्हें जहन्नुम में धकेल देगा। और हज्जाज ने जब ये बातें सुनी थी, इसने बहुत सारे उलमा को कत्ल किया था, बहुत सारे ताबईन को कत्ल किया था, तो आग बगोला हो गया। कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो फरमाया, तू मेरी दुनिया खराब कर देगा तो मैं तेरी आखरत बर्बाद कर दूंगा। हज्जाज ने कहा, तुम अपने कत्ल के लिए बताओ कौन सा तरीका पसंद करते हो। तो फरमाया, हज्जाज बल्कि तू अपने कत्ल का तरीका चुन ले। अल्लाह की कसम, जिस अंदाज से भी तू मुझे कत्ल करेगा वही अंदाज कयामत के दिन तुझे कत्ल करने का इख्तियार किया जाएगा। तो हज्जाज बड़ा जालिम था, तो कहने लगा, तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। फरमाया, अगर ऐसा हुआ भी तो वो माफी अल्लाह की तरफ से होगी। तू मुझे छोड़ के अपने जुर्म से बरी हो जाएगा। तो हज्जाज गुस्से से आग बगोला हुआ और दरबान से कहा, तलवार और चमड़े की चादर लेकर आओ, यानी वो विप जो होता है, कोड़ा जो होता है। ये सुनकर सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। हज्जाज ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया, तो मैं तेरी जुर्रत के ऊपर मुस्कुरा रहा हूँ और तेरे मुतल्लिक जो अल्लाह का हिल्म है, बुर्दबारी है, वो देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कितना तहम्मुल है तेरे साथ। हज्जाज ने कहा, जल्लाद इसे कत्ल कर दे। आपने अपना रुख ना किबले की तरफ कर दिया। फरमाया, वज्जह इन्नी वज्जह तो वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाती वल अर्द हनीफ ममाना मिनल मुशरिकीन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, वही इन्होंने भी कहा। तो हज्जाज ने कहा, इसका मुंह भी किबले की तरफ से हटाओ, हटाओ इसका मुंह। तो फरमाते हैं, फअईना मा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्ला, जिधर भी तुम रुख कर दो उधर अल्लाह है। मतलब अगर किबले की तरफ से फेर भी देते हो तो जिधर भी रुख करोगे अल्लाह उस तरफ है। हज्जाज ने कहा, इसको ऊंधे मुंह लिटा दो, नीचे की तरफ मुंह कर दो। फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे, इसी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे। तो इतना गुस्से में आया, कहता, अल्लाह के इस दुश्मन को कत्ल कर दो, मैंने जिंदगी में कुरान की आयात इससे ज्यादा याद रखने वाला कोई देखा ही नहीं। तो इन्होंने दुआ की थी कि या इलाही, मेरे बाद हज्जाज को किसी पे मुसल्लत ना करना, यानी किसी और के साथ ना ये ऐसा कर सके। इनके कत्ल को अभी 15 दिन नहीं गुजरे थे कि हज्जाज को इतना शदीद बुखार हुआ, कभी बेहोश हो जाता, कभी होश में आता, जब आंख खुलती थी तो चीख मार के उठता था। कहता था, सईद बिन जुबैर ने मेरा गला पकड़ रखा है, वो मेरे से पूछता है, बताओ तुमने मुझे क्यों कत्ल किया? फिर बच्चों की तरह रोने लगता, कहता, भला सईद बिन जुबैर से मेरा क्या वास्ता, मुझे क्या, दुनिया वाला सईद को मुझसे दूर करो, इससे मुझे बचाओ, मैं मारा गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह करते करते हज्जाज मर गया था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ऐसे जो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कैसे हो जाता है कि जैसे उन्होंने एक उरवा तिल वुस्का थाम लिया, एक ऐसा मजबूत कड़ा वो कभी नहीं टूट सकता। यानी कोई उनके साथ कुछ भी कर ले ना, फिर उनका दिल मुतमईन रहता है, वो डरते नहीं है। जैसे इब्ने तैमिया को जब जेल में डालने लगे थे तो फरमाया था कि मेरी जन्नत तो मेरे दिल में है, वो तो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे मैं जेल में हूं चाहे कहीं पे भी हूं। तो वो फिर जो ताहूत का इनकार करता है ना और अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, ये मिसाल है उनकी कि वो उन्होंने इतना मजबूत कड़ा थाम लिया जिसको कभी नहीं टूटना। और अल्लाह ताला सुनने वाला है और वो जानने वाला है किस पे क्या गुजर रही है। और आज जो हम आयात पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें भी यही बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे कलमा हक बुलंद किया था। और ये सबसे बड़ा जिहाद होता है कि जालिम बादशाह के आगे कलमा हक बयान करना, क्योंकि जालिम बादशाह के आगे बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़े बड़े थर थर कांपने लगते हैं, बड़े बड़े लोग बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका रोब होता है, उनके पास पावर होती है, वो कुछ भी इंसान को कत्ल करा दें, कुछ कर दें, जो कि नमरूद ने भी किया था। तो ये नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मुकालमा हुआ था ना, वो है। और इसमें भी आपको यही पता चलेगा, फकद इस्तमसका बिल उरवा तिल वुस्का, जो तो उसने थाम लिया फिर मजबूत कड़ा, लन फिसाम अलहा, जो ताहूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लेकर आए ना, उसने थामा है वो मजबूत कड़ा। तो कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजबूत कड़ा थाम लिया और जिसको नहीं टूटना, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने फिर इनकी ताईद की, कैसे अल्लाह वली हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ये इन्हीं आयात की मिसाल आगे दी जा रही है, एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। फिर हम दूसरा वाक्य आज पढ़ेंगे जिंदगी और मौत देने का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना अल्लाह हय और कयूम है आयतल कुर्सी में, तो अल्लाह ताला मुहयी व मुमीत भी है, ठीक है, वो जिंदा करता है और वो मारता है। और कायम रखना किसी को ये अल्लाह ताला ही का काम है। यानी मैंने आपको बताया था ना अल कयूम में, कि अल्लाह ताला ही है कि अगर किसी को जिंदा रखे, अगर अल्लाह ना जिंदा रखे तो वो कोई चीज सलामत नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती। तो हम आगे देखेंगे कि जिंदगी और मौत कैसे अल्लाह देता है और कैसे अल्लाह ताला दोबारा उठाता है। दो मिसालें आएंगी, एक पहले उजैर अलैह सलाम की और फिर उससे अगली फिर इब्राहिम अलैह सलाम की मिसाल को हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करता है। और उसके बाद आज के जो आखिरी टॉपिक होगा वो यही होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और कब उसका अजर आप ले सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किस शर्त पे आपको अजर मिलता है। हर एक खर्च किया हुआ अल्लाह के रास्ते में वो उसका अजर नहीं मिल जाएगा क्या? तो उसकी एक शर्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब दूसरा वाक्य क्या आता है, जो मैंने आपको बताया उजैर अलैह सलाम का वाक्य, और ये वाक्य उस वक्त का वाक्य है जिस वक्त बनी इसराइल को बुख्त नसर एक बादशाह था, उसने आके इस कदर मारा था, इस कदर बनी इसराइल को, ये मूसा अलैहि सलाम के बहुत बाद की बात है, इस कदर ज्यादा बनी इसराइल के ऊपर जुल्म ढाया गया था, इतना ज्यादा उनको उनमें कत्लो गारत किया गया था, बैतुल मकदस की भी ईंट से ईंट बजा दी गई थी, कोई जगह नहीं थी जहां सलामत रही हो। उन्होंने 6 लाख को कत्ल कर दिया, 6 लाख को वो कैदी बना के ले गए अपने साथ, गुलाम बना दिया, और यानी बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया उनके शहर को, ठीक है। तो ये उजाड़ दिया, मकानात गिरा दिए, बस्ती वीरान हो गई। तो ये उजैर अलैह सलाम जो थे ये वहां से गुजरे। अब वो क्या देखते हैं और क्या होता है ये हम देखते हैं आयत से। औ या, जैसे हम कहते हैं ना ये या ये चीज़, पिछली चीज की वजाहत ये चीज कर रही है कि अल्लाह ताला कैसे जिंदगी देता है। उन्होंने फरमाया था ना अल्लदी युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है और मौत देता है। तो इसकी एक और मिसाल देख लो, औ कल्लदी, या उस शख्स की तरह, मर्रा अला करियतिन, जो गुजर रहा था, मर्रा या मर्रू यानी गुजरना चलना, अला करियतिन ऊपर एक बस्ती के, और ये जरूसलम की बस्ती थी, वही खाविया अला उरूशिया, और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। बस्ती जो थी वो तो जो इतना पुर रौनक शहर था ना, वो इस तरह उजड़ा पड़ा था, इतना वीरान था, ऐसे था यानी अब छतें उल्टी हुई हुई थी, यानी मकान भी कोई बाकी नहीं रहा था, इंसान तो वहां पे दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता था। काला, उसने कहा, अन्ना यो ही हादिहिल्लाहु बादा मौतिया, कैसे अल्लाह जिंदा करेगा इसको इसकी मौत के बाद, कैसे इस बस्ती को जिंदगी मिलेगी। ये नहीं कि उनको कोई शक था अल्लाह ताला माफ करे, उजैर अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन यानी एक जहन में बात आती ना इंसान की कोई चीज को देख के कि ये इतनी बर्बाद हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है, कैसे अल्लाह करेगा इसको जिंदा। अच्छा, उनके मुंह से ये बात निकलनी थी कि फअमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने मार दिया उसको, मौत दे दी उसको 100 साल तक, 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको मौत दिए रखी। अल्लाहु अकबर, सुम्मा बाअथा, फिर उठाया उसको। आप फा और सुम्मा में फर्क देख रहे हैं ना, फा जो है वो जल्दी के लिए होता है, और थुम्मा दोनों का माना हम तो और फिर तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन आप वहां पे देखें, जब उन्होंने कहा ना, उसी वक्त फअमातहुल्लाह, उसी वक्त अल्लाह ने उनको मौत दे दी। सुम्मा, अब तराखी है इसके अंदर, डिले है इसके अंदर, 100 साल का डिले है। सुम्मा बाआसा, फिर उठाया उसको, जिंदा किया उसको, और उससे पूछा, काला, उससे कहा, कम लबिस्ता, कितनी देर तुम ठहरे हो, यानी कितनी देर तुम सोए रहे हो, कितनी देर तक तुम मुर्दा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, काला लबिस्तु, लबिस्ता था, फिर लबिस्तु है, दोनों में क्या फर्क है? देखें, एक जबर और पेश का ही फर्क आया ना, तो क्या माने में क्या फर्क पड़ गया? एक में तुम है, एक में मैं है, ये देखें फर्क। ता के ऊपर जबर आई तो तुम ठहरे, लबिस तू, मैं ठहरा, क्या? तो ये नोट करें, यौमन एक दिन, औब आधा यौम या दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि जिस वक्त उनकी रूह निकली थी, उस वक्त सुबह का वक्त था, और 100 साल के बाद जब वो उठे तो शाम का वक्त था, तो उनको यही ख्याल आया कि एक वो ही दिन होगा, जाहिर है सुबह को मैं सोया हुआ तो एक दिन सोया रहा पूरा, या दिन का कुछ हिस्सा कह सकते हैं। काला फरमाया, बल लबिथ्ता मिअत आमिन, तुम तो 100 साल तक तुम ठहरे रहे, यानी तुम पड़े रहे 100 साल तक, 100 साल तक तुम मरे रहे। अल्लाह अकबर। तो जब वो इस हालत में थे तो उनको इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो कितनी देर तक मुर्दा रहे हैं। मौत और नींद एक जैसी चीज होती है। हम भी जब सोते हैं तो हमारी रात को आंख खुले तो हम घड़ी देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या टाइम हुआ, 12 बजे हैं या रात के 3 बज गए, या अगर अर्ली मैं सोई थी तो अभी 11 ही बजे हैं। बस दफा हम सोते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अभी 11 ही बजे, बस दफा पूरी रात सो लेते हैं और आंख खुलती है तो लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो सोए थे, और कितना फजर का टाइम होने लगता है, तो हमें भी नहीं पता चलता ना कि हम कितनी देर पड़े रहे। इसी तरह कयामत के दिन जब लोग उठेंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि हम कितना अरसा रहे, यानी कितना अरसा हम दुनिया में भी रहे, और ये जो कब्र थी सारा मिला के कितना अरसा रहे। तो बास कहेंगे ज्यादा से ज्यादा ना 10 दिन हम रहे थे, यानी कंबाइन दुनिया और कब्र की जो जिंदगी थी वो सब मिला के, और बास कहेंगे नहीं, कहां 10 दिन, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, पूछ लो उनसे जो बहुत ज्यादा यानी ये हिसाब किताब करने वाले हैं, उनसे बेशक पूछ लो एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा रहे हैं, और वो भी कहेंगे हाँ इतना ही रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पूरी जिंदगी क्या लगेगी हमें, जिसके पीछे हम कितना मरते हैं, कितना लड़ाइयां रखते हैं, कितनी नफरतें रखते हैं, कितने कीने दिल में पाले हैं, कितनी शिकायतें हैं दूसरों से, ये क्या इसकी हैसियत है? दिन का कुछ हिस्सा, कुरान में भी आता है अल्लाह ताला फरमाएंगे उस दिन तो कितना रहे, तो लोग कहेंगे दिन या दिन का कुछ हिस्सा, अल्लाह हम इससे ज्यादा तो हम रहे ही नहीं, कसम से हम इससे ज्यादा रहे ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो उजैर अलैह सलाम भी कहते हैं, मतलब कि अल्लाह के नबी हैं, कि सोचे उनको कैसा फील हो रहा होगा, फीलिंग उनको यही आ रही है कि बस मैं तो थोड़ी देर ही रहा हूं, अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम 100 साल सोए पड़े रहे हो, यानी मरे रहे हो। फंजुर, देखो, इला तामी का शराबी, अपने खाने पीने की तरह, जो खाना पीना लेके निकले थे, लम यतसन्ना, खराबी नहीं हुआ, हालांकि आप खाने पीने को आप रख दें थोड़ी देर के लिए ही, फ्रिज से बाहर ही पड़ा रह जाए सालन, तो वो सीधा हो जाता है, अगले दिन आप स्मेल आने लगती है, पानी पे काई जमने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश था जैसे अभी लेके निकले थे। वंदुर इला हिमारी का, और अपने गधे की तरफ देखो, उसका तो पिंजर हुआ पड़ा था, गधे की तो हड्डियां भी जो थी वो गल के और चूरा चूरा हो गई थी, वो चीज जो चंद घंटों में सड़ जाती है, बासी हो जाती है, वो खराबी नहीं हुई, और वो जिसको गलने सड़ने में कई साल लग जाते हैं, वो बस बिल्कुल चूरा हुई पड़ी है। देखिए ना, दो मुतजाद चीजें हैं ना, खाना और पीने, और गधे की हड्डियां चूरा चूरा होने में कितना ज्यादा टाइम का फर्क है, एक एक दिन का बात है और एक सालों साल की बात है, कई 100 साल उसमें लगे। शायद, लेकिन वो ऐसे हुआ हुआ, वली नजअलक आयत लिन्नास, और ताकि हम बना दें तुझे एक निशानी लोगों के लिए, तुम खुद लोगों के लिए निशानी बन, यानी तुम लोगों के पास निशानी लेके जाना तो बाद की बात है, तुम योर सेल्फ एक निशानी होगे लोगों के सामने। और वाकई ये निशानी बन गए थे, इसलिए कि इसके बाद जब ये यहां से गए अपने घर, वहां पे तो बस्ती ही अलग हो चुकी हुई थी, कुछ शहर का अलग ही नजारा था, लोग मुख्तलिफ थे, तो जहां पे इनका घर था वहां गए तो देखा कि इनके पोते भी बूढ़े हो चुके हुए थे। अरे 100 साल गुजर गए, पोते भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों को ये पता था कि हमारा एक नबी होता था जो कि गुम हो गया था, और वो मिला ही नहीं किसी को भी। और देखें सुभान अल्लाह, वहां पे लोग गुजरे होंगे या लोग ने बस्ती बसी या जो भी, कभी कोई इस तरफ को आया ही नहीं, या किसी ने भी इनको देखा ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने उनकी नजरों से छुपा के रखा। वंदुर, और देखो, इलल एजाम, हड्डियों की तरफ, यानी ये जो गधे की हड्डियां हो गई हैं इनकी तरफ देखो, कई फनुनशीज हुआ, किस तरह हम उठा देते हैं इनको, सुम नकसुहा लामा, फिर इसके ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं। और फिर इन्होंने देखा तो अल्लाह ताला ने इनके सामने इनके गधे की जो हड्डियां थी वो ऐसे ऐसे जुड़ती चली गई, मिलती गई और जुड़ती गई, और उसके ऊपर जैसे पहनाते हैं गोश्त, तो गोश्त पहनाया गया, कोई ऐसा नहीं है जो नजर आ रहा है कि ये सब कुछ कर रहा हो, लेकिन कोई है जिसका अमरे कुन है, कुन हो जा, तो वो सब होता चला जा रहा था। आज हम बड़ी अच्छी तरह इस चीज को समझ इसलिए सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मूवीज में दिखाते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं, कोई चीज ऐसे कोई बिखर जाता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होके जुड़ता जाता है और खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, एक का बिल्कुल भेजा पाश पाश हो गया, वो बिल्कुल मर गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े, और फिर वो जुड़ गए और फिर खड़े हो गए। हम जिस तरह देखते हैं ना, वो तो इन्होंने एक इफेक्ट्स दिए होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, लम्मा तबैयना लहू, जब वाजे हो गया उसके सामने, काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसने कहा कि अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है। क्या वाकई ऐसा यकीन हमें है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जब ये दिखाया है ना, तो एक मुर्दा बस्ती, यानी एक बस्ती बिल्कुल उजड़ चुकी है, एक बस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कैसे ये जिंदा होगी? ये एक जहन के अंदर आई बात, तो अल्लाह ने उनको खुद मिसाल बना दिया कि तुम खुद देखो, जब तुम्हें मैं मार के और 100 साल के बाद उठा सकता हूं, तो इस तरह मैं इस बस्ती को भी उठा सकता हूं। और इसी के अंदर एक बहुत गहरी बात है, बनी इसराइल यानी मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दीन के लिहाज से बिल्कुल मर चुके थे, दीन का जवाल आ चुका था, इस कदर गुनाहों में पड़ के, इस कदर ज्यादा अंबिया को भी इन्होंने, उनकी भी तकजीब की, और बहुत ही कहां तक पहुंच गए थे, और ये अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। अब देखें, उनको ख्याल आया कि ये कैसे दोबारा, कभी हो सकता है कि ये ठीक हो, कभी हो सकता है कि दोबारा इनके अंदर इनका रिवाइवल हो। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जो मुर्दा है ना, अल्लाह उसको जिंदा कर सकता है, ये मरी हुई कौम भी दोबारा जिंदा हो सकती है, ये मरी हुई उम्मत भी दोबारा जाग सकती है। और फिर उजैर अलैहि सलाम ने उनमें काम किया था कि तौरात भी इनसे छिन गई हुई थी, ये बुख्त नसर जो था ना, इसने तौरात का भी खत्म कर दिया हुआ था, इन्होंने अपने हाफजे से फिर तौरात पढ़ी थी और दोबारा बनी इसराइल को तौरात मिली थी, और फिर इन्होंने इनके अंदर काम किया था, और दोबारा इनके अंदर जिंदगी की लहर आई, दोबारा ये दीन की तरफ आए। तो किसी कौम की मौत होती है जब वो अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जब तो वो कुफर और नाफरमानी और गुनाहों में पड़ जाती है, बिल्कुल जैसे उम्मत मुस्लिमा है आज। इंसान कभी सोचता है ना, कैसे कभी ये उठेगी उम्मत, और मायूसी होने लगती है, और हम सोचते हैं कैसे कभी जिंदा होगी, ये तो मर चुके हैं बिल्कुल। ये उसकी मिसाल है कि अल्लाह जिसको चाहे उठा दे, अल्लाह ताला है जो उठाने वाला, तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि ये कभी नहीं उठ सकते? और फिर रिवाइवल हुआ था बनी इसराइल का। दोबारा जिंदा हो गए थे। यानी दोबारा जिंदा होने से मतलब समझ रहे, ये नहीं कि मर के वो जिंदा हुए थे, मतलब जैसे आज उम्मत मुस्लिमा मर चुकी है ये, इनको जूते मारते जाए मारते जाए मारते जाए, जो मर्जी मारे, कोई उठ के कहता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये जुल्म है, और मारो इनको, ये इसी काबिल है। आज इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी दीन, इनका मजहब, इनका क्या चीज रह गई है बाकी, अमल में किधर खड़े हुए हैं। तो आज क्या हमें भी नहीं ख्याल आता कैसे जिंदा होगी, कैसे होगी, कैसे अल्लाह इनको जिंदा करेगा। अल्लाह दिखाता है कि वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मायूस ना होना। इसी तरह इंसानों में भी कई इंसान मर जाते हैं, उनका मर जाना पता ही क्या है, उनके ईमान की मौत। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक माँ, इतना इतना दर्द भरी उसकी कहानी थी कि उसका बेटा जो है उसने अपना नाम बदल लिया, क्रिश्चियंस वाला नाम रख दी, मोहम्मद उसका नाम था, स्टार्ट उसका फर्स्ट नेम मोहम्मद था, और उसने बदल के अल्लाह बेहतर जानता क्या रख लिया, और बाइबल भी घर पे ले आए। उस माँ की तड़प देखे और उस माँ का रोना देखे आप कि क्या होगा, और उसके दर्द को आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये क्या, ये मौत है, ये रूहानी मौत है, जिस्म तो चल रहा है, अंदर मौत आ गई है। क्या कभी वो जिंदा हो सकता है? और मैंने यही आयतें पढ़ानी थी, सुभान अल्लाह, तो मैंने कहा वो जिंदा हो सकता है। आप भी सब दुआ करें ऐसे सब बच्चों के लिए जो रूहानी तौर पे मर चुके हैं, जो अल्लाह से दूर हो चुके हैं, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उन सबको जिंदा कर दे, क्योंकि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो भी जान गए अल्लाह हर चीज को करने पर कादिर है। किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा है, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई बीमारी में मौत के मुंह के पास खड़ा हुआ, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई आज बे औलाद है, अल्लाह उसको औलाद देने पर कादिर है। कोई आज गमों में परेशानियों में घिरा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात से उसको निकालने पे कादिर है। किसी के आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अल्लाह उन हालात को बदलने पे कादिर है। जैसे अल्लाह ताला ये मरी हुई बस्ती को दोबारा उठाने पे कादिर है, जब वो उठे तो देखा समा ही बदल गया हुआ, वो बस्ती जिसको उन्होंने कहा था ये तो वीरान पड़ी हुई, ये कैसे जिंदा होगी, वहां पे हसल बसल है, लोग हैं, चल फिर रहे हैं, वो आबादी है, वहां पे तो कुछ और ही समा था। अल्लाह ने दिखा दिया ना, तुम कहते थे अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह देखो कैसे कर देता है। फिर लोगों को पता भी नहीं चलता अल्लाह कैसे कर देता है। तो आज ये दुआ है दिल से हर एक उस बच्चे के लिए जो दीन से दूर हो चुका, जो किसी अंधेरों में गिर चुका है, जो गुनाहों में पड़ चुका है, जो इसमें आगे निकल चुका है, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उनको वापस पलटा दे, क्योंकि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो कह उठे कि मैं जान गया हूं। क्या पहले नहीं जानते थे? जी जानते थे, वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन अब जानना कैसा है? आइनुल यकीन, एक होता है इल्मुल यकीन, जैसे हमें इल्मुल यकीन है, ठीक है इल्म है, हम पढ़ते हैं, यकीनी इल्म है, लेकिन एक है आइनुल यकीन कि अपने सामने आंखों से कोई चीज देख लेना, वो जो यकीन है वो तो कहां कितने बुलंद पाए का यकीन है। और ये यकीन अल्लाह अपने पैगंबरों को दिया करते थे, क्योंकि उन पैगंबरों ने आगे लोगों को बताना है, और जब वो खुद कन्विक्शन के साथ बताएंगे, जो बात दिल से निकलती है ना वही दिल तक पहुंचती है, तो जब वो पूरे वसूख के साथ बताएंगे तब लोग भी उसी तरह से लेंगे बात को। फिर अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य आता है, वो पता है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शख्सियत है, جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیل کہہ دے، جو انبیاء کے باپ ہیں، جن کو ہر مذہب والے مانتے ہیں، یعنی یہود لے لیں، عیسائی لے لیں، مسلمان لے لیں، ایون ہندوؤں میں بھی کہتے ہیں جو براہمن یہ کہا جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی کہا جاتا ہے، اتنے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بعض کے درجات اللہ نے بعض پہ کیے، شروع میں ہم نے پڑھا ہے نا ورفع بعضہم درجات، بعض کو درجوں میں ہم نے بلند کر دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہ تیسرا واقعہ سنیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، ارینی تو مجھے دکھا دے، کیفا تحیی الموتا، کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، قال بلا، کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یعنی میں اپنے سامنے دیکھ لوں، میرا دل ٹھک جائے اس کے اوپر، جم جائے اس کے اوپر، ایسے ہی ہے، ایسے نہیں تھا کہ ان کو کوئی اس میں شک تھا، ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں آپ مجھے دکھائیں گی کیسے آپ یہ کھانا بناتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں کہ آپ نے یہ کھانا بنایا، مطلب میں دیکھنا چاہتی ہوں نا کہ آپ کس طرح بناتی ہیں، اس سے لرن کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کا کوشچن کرنا صرف اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے تھا، کہ عین الیقین کے لیے تھا کہ مجھے سامنے نظر بھی آ جائے، ورنہ ایسا نہیں کہ ان کو شک تھا، ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جو ہر ہر امتحان میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے تو خود ان کے بارے میں فرما دیا ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنایا، لیڈر بنایا انسانیت کا، وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، تو ان سے ایسی بات نہیں ہم کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو کوئی شک تھا تو انہوں نے کہا پہلے اللہ دکھا مجھے، نہیں ایسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ، بس لو اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، فسرہن، پھر ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، اپنے ساتھ مائل کر لو، ان کو اپنی پہچان کرا دو، جیسے ہوتا ہے کہ وہ پہچاننے لگتے ہیں نا پھر اپنے مالک کو، تو وہ کس طرح اس کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں، پھر اس کو ساتھ بڑے مانوس سے ہو جاتے ہیں، ثم فسرہن الیک، پھر مائل کرو اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے نا، اور ان کے مختلف ٹکڑے آپس میں مکس کر دو، سارے مکس کر دیا سارا گوشت، پھر علی کل جبل، کل جبل مطلب کہا جاتا ہے کہ چار ہی پہاڑ، چار پہاڑوں پہ جا کے ان کے ٹکڑے رکھ دو، ہر پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال کے آ جاؤ، سارا مکس کیا ہوا، تو بعض کہتے ہیں یہ کون سے تھے، مور تھا، مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، تو یہ چار پرندے تھے اور ان کا گوشت مکس کیا، اب کسی کی بوٹی کہیں ہے، کسی کی کہیں ہے، کسی کی ٹانگ کہاں پہ ہے، کسی کے سر کہاں پہ ہے، لیکن ہر پہاڑ پہ بکھرے پڑے ہیں ان کے ٹکڑے، ثم مدعوہن، پھر بلاؤ ان کو، یأتینک سعیا، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور یہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ چار پرندے لیے، ان کے ٹکڑے کیے اور پہاڑوں پہ رکھ دیے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو جب بلانے لگے تو جس جانور کو آواز دیتے تھے اس کے بکھرے ہوئے جو پر ادھر سے ادھر اڑتے آتے، آپس میں جڑتے اور حصے سارے جڑتے، خون خون کے ساتھ ملتا، باقی جتنے بھی اجزاء تھے جس جس پہاڑ پہ ہوتے آپس میں ملتے جاتے، اور وہ پرندہ جڑ کے اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا، آپ اسے دوسرے سر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، چاہے سر جو تھا نا وہ ان کے پاس تھا، یہ ایک روایت میں ہی آتا ہے، تو آپ جو جیسے پرندہ آتا اس کا نہیں سر، کسی اور کا سر اس کو دیتے تو وہ قبول نہیں کرتا تھا، اس کا سر دیتے تھے تو اس کے ساتھ جڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ چاروں پرندے زندہ ہو کے اڑ کے آئے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، اللہ نے دکھا دیا آنکھوں سے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سورت میں پانچ واقعات ہیں موت کو، موت سے زندگی دینے کے، تو یہ چوتھا واقعہ تھا عزیر علیہ السلام کا، اور پانچواں واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو زندہ کرے گا، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، जान लो ये बात, खूब अच्छी तरह इल्म हासिल कर लो इसका, इल्म लो इसका, किसका, कि बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है, गलबा अल्लाह का है, इसलिए अथॉरिटी है उसकी, उसके पास पावर है, वो कादिर है कुछ भी करने पर, और वो हिकमत वाला भी है। यानी यहां इसी तरह अल्लाह ताला जमा करेगा मुर्दों को कयामत के दिन, इसी तरह जिंदा कर देगा। आप इसके अंदर एक बहुत बारीक पॉइंट है, उसको नोट कीजिए, बहुत खूबसूरत बात है, और वो ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस किया हुआ है, हमारी रूहें भी अल्लाह को पहचानती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया ना, पहले पहचान कराओ उनको, अपने साथ अटैच कर लो, फिर जब तुम आवाज दोगे ना, ये उड़ते भी आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस कराया हुआ है, ये जो रूह है ये अल्लाह को पहचानती है, और ये जो जिसम है ना, ये अल्लाह ताला का फरमा बरदार है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि दिल चल तू, वो कहता है नहीं, अल्लाह का हुक्म है बंद हो जा, तो वो बंद हो जाता है। हम जितना मर्जी इसको कहते रहे कि तू चल, मैं तुझे कह रहा हूं चल, तू मेरा दिल है, वो मानता है कोई? मानता है क्या? हमारी नहीं मानता ना, इसे नहीं पता चलता कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी नहीं सुनता, ये अल्लाह की सुनता है। हम एक बीमारी है, कैंसर है, हम कहते हैं तू, कैंसर क्या है? सेल्स ही हैं जो बेहंगम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान के अपने सेल्स हैं। इंसान कहता है कि बंद करो या खत्म करो ये सिलसिला, ये नहीं होना, तुमने नहीं बढ़ना, कितना मर्जी कहते रहो, उन्होंने तो मानना नहीं है, वो तो अल्लाह की मान रहे हैं। ये जिसम भी हमारा अल्लाह से मानूस है और उसकी मानता है, ये रूह भी हमारी अल्लाह से मानूस है और उसकी मानती है। जिस दिन अल्लाह इनको पुकारेगा ना, एक आवाज दी जाएगी, फिर देखना कैसे दौड़े भी जाती हैं हशर के मैदान में और जमा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वो कैसे भागते हैं फिर, बिल्कुल इन परिंदों की तरह, जिनके टुकड़े कहाँ कहाँ थे और मिल गए ना, इसी तरह हमारा जरा जरा पता नहीं किधर किधर होगा, और जो हजारों सालों से मरे हुए हैं उनकी तो हड्डियों के भी चूरे होके, पता नहीं पाउडर बन के, वो पाउडर भी उड़ गए, हजारों सालों से जो मिट्टी में मिल चुके हैं उनके गोश्त तो कब का खत्म हो गया, हड्डियां तक भी बाकी नहीं है आज, वो जर्रा जर्रा कहाँ जाएगा? कोई कोई समुंदर में पड़ा हुआ है, कोई हवाओं में उड़ के कहीं चला गया, कोई जमीन में कहीं मिल गया, कोई किसी के पैरों के साथ लग के कहीं और चला गया, उनकी तो कब्रें भी खत्म हो चुकी हैं, कब्रों के भी निशान मिट चुकी हैं। वो जर्रा जर्रा जो होगा ना, वो इसी तरह जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो अल्लाह के इज़्ज़त से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलाने से नहीं, अल्लाह के इज़्ज़त से वो हर टुकड़ा, हर गोश्त का टुकड़ा उसका आता गया, मिलता गया, इसी तरह मेरा और आपका जर्रा जर्रा आपस में मिलेगा, वो जहां कहीं भी होगा, वो समुद्रों की गहराइयों में कोई जर्रा पड़ा हुआ है, वो कहीं जंगलों में कोई पड़ा हुआ है, वो किसी की दीवार की उसमें लगा हुआ जाके, वो जमीन में रुल चुका है, कहीं जमीन में दफन हो चुका है, वहां से हर जर्रा मिलेगा, और मैं और आप खड़े होके उस एक आवाज की तरफ भागते चले जाएंगे, अपना खुद कंट्रोल नहीं होगा, भागते चले जाएंगे, क्योंकि ना ये जिस्म अपना, ना ये रूह अपनी सुनेगी, ये भागेंगे अल्लाह के हुक्म के तहत। ये तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने हमें ये जो तो इख्तियार दिया था ना, इसको हमने सारा कुछ ही समझ लिया कि बस इसके तो मैं ही मालिक हूं, मैं ही जो करूं, क्योंकि मैं अपना हाथ उठाना चाहती हूँ उठ जाता है, मैं रखना चाहती हूँ रखा जाता है, तो मैंने समझ लिया कि मैं ही बा इख्तियार। हालांकि ये भी अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि ए हाथ उस वक्त उठना जब ये चाहे, ए जुबान उस वक्त बोलना जब ये बोलना चाहे। जिस दिन अल्लाह ने ये इख्तियार ले लिया, वापस देखना यही जुबान हमारे खिलाफ बोलने शुरू हो जाएगी, हमारी सारी बातें बताएगी, ये स्किन हमारे खिलाफ ही बोलेगी, हमारी सब शिकायतें लगाएगी, ये आंख कान ये सब चीजें हमारी खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि ये अल्लाह के गुलाम है और ये अभी भी उसकी गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उसने हुक्म दिया कि इसकी मान। जिस दिन वो ये हुक्म वापस ले लेगा, तो वो वापस अल्लाह के फरमाबरदार। इतनी छोटी सी
टेस्ट को, इतनी छोटी सी बात को हमारी अक्ल ने नहीं समझा आज तक, और हम खुद खुदा बन बैठे। आज जिसको इकतदार मिलता देखे, क्या वो फिरौन और नमरूद नहीं बन जाता? उसको सब हकीर कीड़े नहीं नजर आने लगते? उसको खुद ना भी दावा करे, कोई भी नहीं दावा करता, ना भी कोई कहे आज के दौर में कि मैं खुदा हूं, लेकिन वो काम वही करता है जैसे कि वो खुदा ही है। वो खुदा बन जाता है, अपने आप को यही समझने लगता है। क्या आज ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं इसको यकीन रखते कि ये सारा कुछ मुझे अल्लाह ने अमानत के तौर पे दिया, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी मुझे मालिक बनाया, ये सब इख्तियार अल्लाह ने वापस ले लेना, ये सब उसके गुलाम है, मेरा कुछ नहीं है खुद। देखो फिर कैसे ये जिस्म दौड़ेगा अल्लाह की तरफ, क्योंकि ये उससे मानूस है। असल बात ये है कि इंसान इस दुनिया में जब अल्लाह ने इख्तियार दिया, तब अपने आप को अल्लाह से मानूस कर दे, तब अपने आप को अल्लाह की तरफ मायल करे, तब इंसान अल्लाह ताला का हो जाए, तब मजा आएगा उस दिन जब दौड़ेंगे भी उसकी तरफ। वरना दौड़ तो लगनी है अल्लाह की तरफ, जाना ही पड़ेगा उस दिन उसकी तरफ, लेकिन फिर हालत क्या होगी इंसान का, दिल क्या होगा और उसके जिस्म की हालत क्या होगी? वो जान रहा होगा कि मैंने दुनिया में क्या किया। तो आज इसको मानूस करो अल्लाह ताला से, आज इसको अल्लाह की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि इसके अंदर तड़प है एक रब को पाने की, वो पहचानता है उसको, हमने उसको इधर उधर भूल भुलैयों में लगा दिया।